നമോ ഓരിയന്താണം, നമോ സിദ്ധാണം, നമോ ആര്യാണം, നമോ വജ്ജായാണം, നമോ ലോയ സബ്സാം. മംഗളം ഭഗവാൻ വീരോ മംഗളം ഗോതമോഗണി മംഗളം കുന്ദകുന്ദാദ്യോജയധർമ്മോസ്തു മംഗളം. സർവമംഗല മാംഗല്യം സർവകല്യാണകാരകം പ്രധാനം സർവധർമാണാം ജയനം ജയതു ശാസനം. മംഗളമേ മംഗളകരണ ബീതരാഗ വിജ്ഞാൻ നമോതാ ഹി ജാതേ ഭൈ അർഹന്താദിമാൻ കരി മംഗള കരി ഹോ മഹാ ഗ്രന്ഥകരണ കോ കാജ ജാതേ മിലേ സമാജ സവ പാവേ നിർപദരാജ. അഷ്ടാനിക മഹാപർവ ആജ സപ്തം ദിവസ മേ ബാപ്പാവുട് പർ ഗുരുദേവ് ശ്രീ കാ പ്രവചൻ ജിസ്മേ 110 നമ്പർ ഗാഥ മേ ഭാവ ശുദ്ധി കാ ഉപായ ചൽ രഹാ ഥാ. ഭാവ പാവുഡ് ഹൈ നാ, ഭാവ ശുദ്ധി മാനേ രത്നത്രയ വൃദ്ധി കാ ഉപായ. ഉസ്മേ മുഖ്യതയാ മുനിരാജോ കി ചർച്ച ഹൈ, ഗൗണ രൂപ സേ സംകിതി ജ്ഞാനിയോ കി ചർച്ച ഹൈ. ഉസ്മേ ക്യോകി കവി കവി ഐസാ ഹോതാ ഹൈ കി മുനി ഭഗവന്ത ദീക്ഷ ലേനെ കേ ബാദ് കോ തോ ഉത്സാഹ ഖതം ഹോ ജായ. യേ കോയി സാധാരണ ബാത് നോർമൽ ഹൈ ഐസാ ക്യോ ക്യോകി ജഗത് കി സംസ്കാര അനാദി കേ ഹൈ, ഇസ്കി സംസ്കാര നഹീ ഹൈ. ये आत्मा के संस्कार होते तो फिर देहधारी ना होता. ऐसा हो सकता है कि दीक्षा लेने के बाद उसके भावों में वृद्धि ना हो तो गुणस्थान गिर जाए. इसलिए कुंद कुंद प्रभु फरमाते हैं, तू दीक्षा काल का स्मरण कर कि जब तूने दीक्षा ली थी तो तेरे अंदर कैसा वैराग्य था. वहां मुनियों की चर्चा है, यहां हमें अपने ऊपर घटाना चाहिए. तू उस काल को गिन जिस दिन तू मुमुक्षु हुआ था. हम कहीं ना कहीं अटक रहे हैं. मोक्ष मार्ग का सेवन नहीं कर रहे, केवल हम ध्वजा के पीछे भाग रहे हैं. कहीं ना कहीं अटक गए हैं. तो वहां मुनिराज का वर्णन किया, फिर बहुत वैराग्य की बात की गुरुदेव ने, द्वारिका जलने की बात करी, सब जल गए. देखो यदि होनहार खोटी हो तो पाप के उदय में अज्ञानी को आर्त ध्यान का रस पुष्ट होता है और ज्ञानी को पाप के उदय में वैराग्य बढ़ता है. समझ में आया? अज्ञानी को आर्त ध्यान होता है, हाय 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 हाय, और ज्ञानी के वैराग्य बढ़ता है. जगत अविचारित रम्यम, विश्व में रमणी कुछ नहीं है. केवल जब तक विचार ना किया जाए तभी तक रमणी है. ऐसी चर्चा 110 नंबर में आई और 111 नंबर में भावलिंग को शुद्ध करने के लिए पहले भावलिंग को शुद्ध कर. भावलिंग तो शुद्ध ही है, माने शुद्ध कर माने शुद्ध ही तो है, तभी तो भावलिंग ही है वो. लेकिन उसकी वृद्धि की बात है. फिर द्रव्यलिंग का सेवन कर, चार प्रकार की सेवन कर. इसका अर्थ क्या कि मुनिराज भावलिंग सहित बाहर में उसको निर्दोष द्रव्यलिंग होता है तो उसमें भी दोष मत लगा. उसमें वस्त्र त्याग, केश लुंचन, स्नान का त्याग और पीछे कमंडल, ये मुनि भगवान के बाह्य चिन्ह बताए. फिर 112 नंबर पर बताया कि जगत में भाव बिगड़ने के चार कारण हैं, जिनको चार संज्ञा कहा. आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये पशुओं के भी होती है। पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है, अंतर केवल इतना है कि हमारे दो पैर हाथ बन गए हैं और उनके दो हाथ दो पैर बन गए हैं। व्यक्ति भावों से महान हो जाता है, भावों से निकृष्ट हो जाता है। भावना भवनाशनी, भावना भव वर्धनी। आत्मा तो पशुओं का और मनुष्यों का एक ही है। अभी जो वर्णन चल रहा था अपना, रहस्यपूर्ण चिट्ठी, कल हमने देखा वो ज्ञानी सविकल्प से निर्विकल्प कैसे हुआ। रस निर्विकल्पता का नहीं, रस तो आत्मा का है। जैसे तंद्रा में पड़ा व्यक्ति सो जाता है, उसी तरह भव से थका आत्मा उस उपयोग को, जहां उपयोग को विश्राम करने के लिए और कोई दूसरा स्थान ना मिले, तब उपयोग स्वरूप में समाता है। इसलिए उपयोग में उस शुद्धात्मा की इतनी महिमा होती है, इतनी महिमा होती है कि जगत उसको फीका लगता है। इसलिए ये सहज होता है। कई लोग कहते हैं वास्तव में ये ध्यान की कला है, एक तरीके से शुद्धोपयोग कहें या ध्यान कहें एक ही बात है। सविकल्प और निर्विकल्प पना भी ये श्रद्धा में नहीं होता। सविकल्प और निर्विकल्प ये दोनों ज्ञान के भाव हैं, श्रद्धा के नहीं। आत्मा में जितने गुण हैं वो सब निर्विकल्प ही हैं। एक सविकल्पना और निर्विकल्पना ज्ञान में ही होता है। भैया समझ में आ रहा है? जिसको जिसकी महिमा उसको उसका ध्यान। भले ही हम यहां बैठे हैं लेकिन हमारा हो सकता है उपयोग कहीं दूसरी जगह हो, तो ध्यान उसका चलता है। जगत में एक भी प्राणी बिना ध्यान के नहीं है संसार में। यहां स्वरूप का ध्यान चलता है लेकिन ध्यान के लक्ष्य से ध्यान नहीं चलता, क्योंकि ध्यान के लक्ष्य से चलने वाला ध्यान तो स्वयं सविकल्प है, वो तो चिंता सहित है। यह चिंतन विंतन का भी कोई काम नहीं है, करे क्या, भाषा मजबूर है। शब्द संख्यात हैं और भाव अनंत हैं, तो संख्यात शब्द अनंत को कैसे पकड़े, कैसे पकड़ेगा? इसलिए वो अनुभव में शब्दों का भी कोई काम नहीं रहा। एक प्रश्न आया इसी रहस्यपूर्ण चिट्ठी के प्रसंग में, नारकी जीव को जो शुद्धोपयोग होता है, स्वरूप का आनंद लेता है नारकी, उस समय वो कौन सी भाषा में आत्मा को समझता है? क्योंकि नरक में तो ये भाषाएं है ही नहीं, ना हिंदी है, ना इंग्लिश है, ना गुजराती। वहां तो तड़पन ही तड़पन है और वेदना ही वेदना है बाहर में, वहां भाषा का क्या काम है? एक जन्मजात बालक, उसकी जिह्वा पर अंगूर का रस डाला, वो अंगूर शब्द नहीं जानता, वो मीठा शब्द भी नहीं जानता, तो भी उसको शक्कर की भाव भासना है या नहीं है? उसी तरह नरक का नारकी भी देह बाहर की वेदना, वेदना संबंधी ज्ञान उससे भी भिन्न ज्ञायक का अनुभव कर लेता है, क्योंकि वेदना संबंधी ज्ञान भी तो क्षणिक है। सत्य तो यह है कि वो वेदना का ज्ञान नहीं, ज्ञान का ज्ञान है। इसलिए अज्ञानी वेदना को पकड़ता है और ज्ञानी उसमें झलकने वाले ज्ञान से ज्ञायक को पकड़ता है। इसलिए वेदना के काल में भी समकिति को सम्यक दर्शन, मिथ्या दृष्टि को सम्यक दर्शन हो जाता है। सातवें नरक में, आज गुरुदेव का है ना, नरक में 5 करोड़ से ऊपर रोग, एक 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 रूम में। उसमें आए ब्रह्मचारी रायमल जी के मूल ग्रंथ में रोगों की संख्या जीव के, लेकिन वेदना सम्यक्त हो जाता है। अब आगे क्या कहते हैं, तत्व अवलोकन समय शुद्धात्मानी युक्ति अर्थात नए प्रमाण बड़े पहला जाने। तत्व अवलोकन के समय शुद्धात्मा को युक्ति लॉजिक से नए प्रमाण बड़े पहला जाने। प्रमाण नए रधि गमा, उमा स्वामी महाराज का सूत्र है। आप कहोगे हमको तो इतना ज्ञान नहीं है, सबको है प्रमाण नए का ज्ञान। प्रमाण अर्थात अपनी शुद्धात्मा को जानता है कि मेरे द्रव्य गुण पर्याय की लिमिटेशन क्या है। अब उसमें भी नए बड़े उस शुद्धात्मा को अंगीकार करता है। कैसे करता है कि अशुद्धि साथ रहना अलग चीज है, लेकिन नए उस अशुद्धि को गौण करके त्रिकाल शुद्ध आत्मा को ग्रहण करता है। ये बहुत साधारण बहने जानती है ये कला। गुरुदेव कहते थे 8 वर्ष की कन्या को सम्यक दर्शन हो जाए। बताओ व्यक्ति कपड़ा धोता है या मेल धोता है? बोलो लोग कैसी बातें कर रहे हैं आप, बोलते तो ऐसे कपड़ा धोना है। मेल और मेल कब धोया जा सकता है कि जब मेल कपड़े से पृथक हो। यदि मेल कपड़े में ही समा गया हो तो उस मेल को नहीं धोया जा सकता, वो तो कपड़े का स्वरूप होगा। इसलिए विकार यदि स्वरूप में समा जाए तो विकार स्वरूप का स्वभाव कहलाए, वो कभी समाया नहीं। सत्यवाद तो ये विकार भी नहीं धोया जाता, विकार को पृथक जाना जाता है। अरे समझ में आया नहीं आया? पृथक चीज को पृथक जाना, जो पृथक है उससे हुई विरक्ति, और जो वो स्वयं है उसमें हुई अनंत महिमा। उसकी इतनी महिमा इसको वाणी से कैसे कहें, कहना बहुत, कहने से सच पूछा जाए तो तत्व में हल्कापन आ जाता है। वो कहने की चीज नहीं है। आपका सर दर्द हो रहा हो भारी, और डॉक्टर से जाकर डॉक्टर आपको कहे कि दर्द कैसा था, वो कैसा था? आप मजाक कर रहे हो, मेरा माथा फटा जा रहा है, मैं क्या कहूं, मैं जानता हूं ना मैं वेदना कर रहा हूं। कह सकते नहीं, कहने की चीज नहीं है, वो भोगने की चीज है। सत पूछा जाए तो कहने में थकावट है, चिंतन में भी थकावट है, उस स्वरूप को भोगने में आनंद है। स्वरूप है ही ऐसा महिमावंत, तभी तो उस पर तीर्थंकर और गणधर रीच गए। ये ऐसी अद्भुत चीज है, एक बार इसकी दृष्टि हो जाए। ये भी कहने की बात है कि अज्ञानी पर में प्रेम करता है। सत्य तो यह है कि पर को कोई चाहे नहीं सकता, पर को कोई प्रेम कर ही नहीं सकता विश्व में। हम पर संबंधी आशाओं से प्रेम करते हैं, पर से प्रेम कोई नहीं करता। अरे समझ में आ रहा है, अज्ञान के काल में भी ज्ञान कोई बाहर निकलकर नहीं चला जाता। यहां तो ऐसा कहते हैं, इसलिए नए प्रमाण के द्वारा पहले उस शुद्धात्मा का निर्णय करता है। प्रमाण में एक अंशी के 3 अंश हो जाते हैं द्रव्य गुण पर्याय, लेकिन नए बड़े, यहां कोई साधारण नए की चर्चा नहीं चल रही। नए बड़े कौन से नए के द्वारा शुद्धात्मा ग्रहण होता है? परम शुद्ध निश्चय नए के द्वारा। ये भाषा है, भले ही हो सकता है कोई ज्ञानी परम शुद्ध निश्चय ये शब्द ना जाने, वास्तव में खरेखर नए उसको कहते हैं जो शुद्धात्मा को ग्रहण करे। बाकी सब नए है ही नहीं, उनको हम नए कैसे कहें जिसके द्वारा आत्मा का ग्रहण ही नहीं होता हो। इसलिए नए ही, नए बड़े माने कौन से नए के द्वारा शुद्धात्मा ग्रहण होता है कि ज्ञान की वो दृष्टि, वहां जो अंश था वो अंश ही बन जाता है। नहीं आया समझ में? अरे ख्याल आ रहा? नहीं आ रहा, क्योंकि यदि प्रमाण के द्वारा देखें तो द्रव्य गुण पर्याय, इस द्रव्य के गुण अंश हैं, अरे द्रव्य, फिर से सुनना, द्रव्य अंशी गुण उसके अंश, और फिर गुण अंशी पर्याय उसके अंश, ये ज्ञान की बात चल रही है। और कभी कभी पर्याय अंशी और अविभागी प्रतिच्छेद उसके अंश, उसमें आया है सत्तावलोकन में। पर्याय अंशी और उसमें भी एक एक पर्याय में अनंत अनंत अंश होते हैं, अनंत अनंत अंश, ये सब प्रमाण का विषय है, प्रमाण का विषय। लेकिन जहां शुद्धात्मा को ग्रहण किया, वहां यदि ये भेद रह जाए कि मैं तो अंश हूं, तो अंश की महिमा कैसे आएगी, टुकड़े की महिमा कैसे आएगी। इसलिए श्रद्धा की दृष्टि से तो वो त्रिकाली ध्रुव ही पूर्ण अंशी है। मेरे भैया समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बोलो, कितना अद्भुत मार्ग है। देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं भगवान हूं मैं, पर्याय भले ही पामर हो। पर्याय पामर हो, ये चर्चा भी जब वो बाहर आ गया तब है। यदि पर्याय की पामरता का बार बार भान उपयोग को होता रहेगा तो उपयोग अंदर नहीं समाएगा। यदि कोई छोटे घर की कन्या राजकुमार से वरण करने जाए और बार बार यही सोचती रहे कि मैं तो झोपड़ी वाली हूं, मैं तो झोपड़ी वाली हूं, मैं तो झोपड़ी वाली हूं, तो तलाक जल्दी होगा। तलाक जल्दी होगा। और विवाह हो जाने के बाद वो राजकुमार राजकुमारियों जैसी नहीं रही, तो घर के नौकरी ये कहेंगे गलत पल्ले लग गई है, घर के नौकरी कहेंगे इसमें लक्षण नहीं है राजकुमारी कैसे। जल्दी वो बार बार पति देव को ये कहे, हे राजकुंवर पागल है, तू मेरी पत्नी है, राजकुंवर राजकुंवर कर रही है मूर्ख कहीं की। तो बार बार अंदर समाने वाली पर्याय ये कहे, मैं तो पामर हूं, मैं तो पामर हूं, मैं तो पामर हूं, मैं तो पामर हूं। इसलिए स्वयं अपूर्ण वस्तु अपूर्णता के बोध पूर्वक पूर्णता में नहीं समा सकती। अरे नहीं आया समझ में। इसलिए अनित्य अनित्यता के स्वर छोड़े और नित्यता के स्वर गाए, और अपूर्ण अपूर्णता का स्वर छोड़कर पूर्णता का स्वर मिलाए तो वो पूर्णता ग्रहण होगा, अन्यथा पूर्णता ग्रहण हो सकती नहीं है। इसलिए भावश्रुत ज्ञान में बाहर में उसको स्टार्टिंग में प्रमाण बड़े या नए बड़े आत्मा को निर्णय करता है, जिसे अपन डिसीजन की भूमिका कहते हैं। पछी आराधना समय जी अनुभव कार छे तेमा नए प्रमाण छे नहीं, उसमें नए प्रमाण नहीं है अनुभव के काल में। अरे सच पूछा जाए तो वस्तु में नए प्रमाण कुछ नहीं है, नए प्रमाण जानने की कला है, वस्तु में नए प्रमाण नहीं है। आत्मा में अनंत गुण किस नए से है, बोलो, वो तो स्वभाव से ही है, उसमें कोई नए नए डाले हैं क्या आत्मा में गुण? ये तो ज्ञान का दृष्टिकोण है, ज्ञान का दृष्टिकोण। अच्छा बताओ, केवली को नए होते हैं नहीं होते? केवली को, अच्छा केवली को नयों का ज्ञान होता है या नहीं होता? हेलो कमाल है, केवली नयों को तो जानते हैं पर नयों से नहीं जानते। क्या बोला? केवली नयों को तो जानते हैं पर नयों से नहीं जानते। आप कहोगे जब अनुभव के काल में नए प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है तो फिर हम नए प्रमाण से जाने क्यों? जिसने समुद्र पी लिया हो वो बूंद को क्यों चाटेगा? तो जिस केवली ने लोकालोक को सटक लिया हो और संपूर्ण प्रत्यक्ष सब ज्ञान हो रहा हो, नए की वहां आवश्यकता पड़ती है कि जहां हमारे भावश्रुत ज्ञान में वस्तु का पूर्ण दिग्दर्शन नहीं होता, वहां हम एक को गौण करके दूसरे को ग्रहण करते हैं। जहां दोनों ही चीज नजर आ रही है, पूरी ही वस्तु नजर आ रही है, वह नए की क्या आवश्यकता है। जहां सफाई हो चुकी फिर भी सफाई करे तो पागल स्त्री है। खिचड़ी बन गई, दोबारा उसको दिखाए कि मैं बहुत मेहनती हूं, दोबारा खिचड़ी चढ़ाएगी उस पर कुकर पे तो क्या होगा, जलेगी। चीज ही पक गई तो अब उसको अंगीठी पर रखने का क्या लाभ है। जब वस्तु ही पूरी हो समझ में आ गई तो अब उसको नए प्रमाण के द्वारा जानने की क्या आवश्यकता है। इसलिए अनुभव काल छे तेमा नए प्रमाण छे नहीं, कारण के प्रत्यक्ष अनुभव छे। ये बहुत अद्भुत लाइन है, प्रत्यक्ष अनुभव छे, परोक्ष अनुभव नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव है। ये रूमाल जो हाथों में नजर आ रहा है, बताओ ये प्रत्यक्ष या परोक्ष? आपको ये आपको सबको रूमाल दिखाई दे रहा नहीं दे रहा, ये प्रत्यक्ष है या परोक्ष है? ये परोक्ष है। और केवली हमसे सात राजू ऊंचे बैठे हैं उनके लिए प्रत्यक्ष है। प्रश्न इसका नहीं कि वस्तु किसके नैनों के आगे है, किसके कलेजे के सामने है। प्रश्न इसका है कि अतीन्द्रिय भोग किसका है। अनुभव के काल में इंद्रियों का तो कुछ काम ही नहीं है, क्योंकि इंद्रियों के द्वार सबके बाहर खुलते हैं। इंद्रियों की तो छुट्टी हुई, बचा मन। तो जो मन था वो मन अनुभव से पूर्व द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन करता था, क्योंकि मन में ऐसी ताकत है कि मन मूर्तिक विषय का भी चिंतन करता है और अमूर्तिक विषय का भी चिंतन करता है। इसलिए मन को ग्रंथों में दोनों लिया, अज्ञानी के मन को इंद्रिय के खाते में डाला है, और ज्ञानी का जो भाव मन है जो स्वरूप को पकड़ता है उसे अतीन्द्रिय के खाते में डाला है। तो वो ही मन जो बाहर एंगेज था वो मन अंदर समा जाता है। इसलिए आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव है, प्रत्यक्ष अनुभव। कोई चीज का प्रत्यक्ष अनुभव में अलग ही आनंद है। कोई चीज का नक्शा देखो और उसके बाद उस वस्तु को प्रत्यक्ष देखो, तो नक्शा तो एज आगम है, आगम से ज्ञान किया। ये बात कहां आई? पांचवी गाथा। आचार्य अपने संपूर्ण वैभव से शुद्धात्मा को दिखाते हैं, और आचार्यों का वैभव क्या है? आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश और स्वसंवेदन। यदि स्वसंवेदन ना हो तो फिर आगम ज्ञान की भी क्या वैल्यू होगी? मैंने उस शुद्धात्मा को स्वयं सेवन किया है, अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं, और मैंने शुद्धात्मा दिखाने का व्यापार किया है। ये शब्द है, लोक में व्यापार अच्छे अर्थ में नहीं लिया जाता। व्यापार का मतलब वो ये कहते हैं, मैं शुद्धात्मा देख रहा हूं और जो उनके साथ हैं उनको शुद्धात्मा दिखाते हैं। गुरुदेव का चेहरा ऐसा था कि जो देख ले ऐसा लगे कि शुद्धात्मा नजर आ गई। शुद्धात्मा वो प्रत्यक्ष अनुभव छे, परोक्ष नहीं। इसका एग्जाम्पल सुनना आप, विस्तार तो बहुत है भाई। ज्ञानियों के प्रवचन, गुरुदेव का अध्यात्म संदेश इस पे प्रवचन है, वो इतनी जल्दी नहीं था, मैं तो डायरेक्ट वहां से भी ले सकता था, लेकिन 150 पेज है, कम से कम 2-3 महीना लगे, दो दो टाइम चले। तो इतना अद्भुत सूक्ष्मतम प्रवचन है। मेरा आपसे निवेदन है कि सत्य तो ये है कि अज्ञानियों के लिए पर्व पूर्ण हो जाता है, और ज्ञानियों के लिए पर्व पूर्ण होने के बाद आराधना शुरू होती है। हम मनोरंजन प्रिय ना बने, हम उत्सव प्रिय ना बने, हम आराधना प्रिय बने, बाकी जीवन तो निकल जाएगा। इस सब घटाटूप में भागा दौड़ी मुंबई की महामाया नगरी आदि जिंदगी तो सड़कों पे जा रही है, क्या करेगा, ये सब निकल जाएगा, अंतिम समय कुछ कुछ नहीं जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। ऐसे ऐसे रोग हो रहे हैं गुरुदेव का प्रवचन में, कल्पना नहीं करो। ये तो जिसके ऊपर नहीं बीती बस वो ही जाने। एक क्षण में सब आशाओं पे तुषार पात हो जाता है, एक क्षण में, एक क्षण में, एक क्षण में हंस रहे हैं, एक क्षण में डॉक्टर बोले साहब दर्द रहता है, दर्द रहता है, अब क्या क्या होता है MIR और ये और वो, बोले आप ऐसा पिताजी को लेके आना कल, इसका अर्थ समझ गए, हम तुम्हें नहीं बताएंगे क्यों, कि बस पिताजी को कहते हुए इनकी सेवा करो, एक महीना रहा है। जब मृत्यु आती है सर पर, मृत्यु, तो उस समय सामने जब उसमें उस समय कुछ अच्छा नहीं लगता, रोग के काल में धर्म भी नहीं सुहाता, क्योंकि अंदर से आराधना तो नहीं करी, उसे पल पल तिल तिल मरता है, तिल तिल मरता है। उस समय न धन काम आता, न सगे संबंधी काम आते, लेकिन यदि ये चीज है तो ये काम आएगी, ये साथ जाएगी। अरे करोड़ों प्रतिकूलता हो, शरीर के सहस्र खंड हो रहे हो, ज्ञानी स्वरूप का अनुभव करता है। आगे इसमें बड़ी गजब की बात आ रही है इसमें, जेम रतन्नी खरीद भक्ति अनेक विकल्प करे छे, पण जाने ते रत्न प्रत्यक्ष पहिरवामा आवे छे, त्यारे विकल्प होतो नथी पहिरवानु सुखद छे, ए प्रमाणे सविकल्प द्वारा निर्विकल्प अनुभव थाय छे। रत्न खरीदता है, हार खरीदे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जीवन में लौकिक सुख भी नहीं भोग पाते, जैसे करोड़ों का हार खरीदा, सोने चांदी के गहने खरीदे, तो उनके पुरुष उनको पहनने ही नहीं देते, कहते जमाना खराब है, जमाना खराब है, अरे तुम किस मूर्ख से शादी हो गई जमाना खराब है तो मैं फिर इसको बनवाई क्यों, गहने को बनवाया क्यों, बनवाया क्यों, और कोई चीन के लेके चला जाएगा, कोई चीन के लेके चला जाएगा, तो सारी जिंदगी वो बस गणना ही करते रहते कि मेरे घर में इतना सोना है, इतना सोना है, मेरे घर में इतना सोना है, पहनने का सुख नहीं भोग पाती, पहनने का भाग्य। व्यक्ति सच पूछा जाए, पुण्योदय के काल में भी पापोदय भोगता है भावी तृष्णा के कारण। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में लिखा, जगत में दान तो देने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, करोड़ों में कोई एक होता है, दे तो पाता ही नहीं व्यक्ति, और भविष्य की चिंता में भोग भी नहीं पाता, भविष्य में भोगेंगे, भविष्य में भोगेंगे, तू रहेगा तब भोगेगा ना, और जिस समय तू भोगने लायक रहेगा, जब तू भोगने की कहता है भविष्य में भोगूंगा, उस समय तू जब भोगेगा तो जगत हंसी उड़ाएगा कि देखो वृद्ध को शर्म नहीं आ रही, तो क्या तू वृद्धावस्था में भोगेगा, इसलिए यहां तो इसलिए जगत का सुख नहीं भोग पाता। अब खरीद लिया उसका यही सोचता रहे इतना महंगा है, इतना महंगा है, तो उसको पहनने का सुख कब भोगेगा, पहनना उसको खरीदते समय तो अनेक विकल्प किया जाएगा। एक एग्जाम्पल सुनना, व्यक्ति दर्पण खरीदता है बाजार में, उस समय जिस समय दर्पण को खरीदते वक्त जब दर्पण देखता है, उस समय दर्पण देखता है या चेहरा, जिस समय खरीदता है उस समय दर्पण देखता है या चेहरा, चेहरा नहीं देखता, उस समय दर्पण देखता है। अब घर में जब प्रतिदिन देखता है तो दर्पण देखता है या चेहरा, दर्पण नहीं देखता, उसका धारी देखता रहेगा उसकी, यदि पूरी जिंदगी यही करता रहेगा, मैं द्रव्य दृष्टि से ऐसा, पर्याय दृष्टि से ऐसा, मेरे अंदर ज्ञान, मेरे अंदर सुख, मैं अनंत महिमावत। अरे हमारी तुम्हारी कथा तो सच में ऐसी है कि हम शुद्धात्मा की महिमा करते करते जवान में छाले पड़ गए हैं। घबराना नहीं है, आप सुनना बात को, इससे लगता है कि वचनों में जोर ज्यादा है, स्वरूप को भोगने में जोर नहीं है, वचनों में थकावट है, भोगने में आनंद है, चिंतन में चिंता है, विश्राम में चैतन्य का भोग है। प्रश्न यह है कि चिंतन भी वहां तक है कि जहां तक चैतन्य प्राप्त नहीं हुआ, वाणी भी वहां तक है जहां तक किसी चीज को अधिक वाणी में जोर दे रहे हैं, इसका मतलब तुम उससे दूर हो, यदि भोग लिया होता तो वाणी बंद हो गई होती। इसलिए अब कब तक डिसीजन करता रहेगा, कब तक डिसीजन करता रहेगा उस स्वरूप को भोगना। अरे भोग इसका अर्थ क्या, बस वो मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, कौन किसको भोगे। अकेले की कला है, अकेले की कला, ये बहकाने की बात नहीं, परम सत्यवाद है। यहां से जाना, चतुर्दशी का दिन है आज, आराधना का दिन कहलाता है चतुर्दशी का दिन। पहले जमाने में चतुर्दशी में लोग दुकान नहीं खोलते थे, घर मकान दुकान नहीं, बस सामायिक करते थे, स्वाध्याय सोना सामायिक, घर जाकर यही कार्य करना, अध्यात्म संदेश लेकर बैठ जाना। सब पर है साधन आजकल, तो सब पर है, कम से कम उस स्वरूप का अनुभव भी ना हो पाए तो कम से कम नए प्रमाण बढ़े, वो मैं कैसा तत्व हूं जिसका प्रत्यक्ष अनुभव होता है, उसका डिसीजन तो हो कम से कम। बणी जे ज्ञान पांच इंद्रिय यानी छठा मन द्वारा प्रवर्तितु हतु, ते ज्ञान सर्व बाजूती समेटाई अनिर्विकल्प अनुभव मां केवल स्वरूप सन्मुख थी। वो सुनो सुनो सुनो, ज्ञान दूसरा नहीं है, फिर से सुनना, ज्ञान दो तरह के नहीं होते, इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान। सत्य तो ये है कि सारा ही ज्ञान अतीन्द्रिय होता है, लेकिन जो ज्ञान पर सन्मुख हो जाए उसमें इंद्रियां निमित्त हो जाती हैं, इसलिए वो इंद्रिय ज्ञान कहलाता है। पानी हरिजन के घर जाने से इतना गंदा हो जाता है कि हरिजन का ही कहलाने लगता है। पानी गया हो उसी कुएं से, गांव का कुआ होता है एक, और वहीं ब्राह्मण के घर पानी जा रहा है और वो ही पानी हरिजन के घर जा रहा है, वो ही हरिजन आपको गिलास से पानी पिलाए तो आप पियोगे नहीं पियोगे, आप पोगे नहीं, ये नहीं पी सकते, हरिजन के घर का है वो। ज्ञान है तो ज्ञान सागर का ही, ज्ञान निकला अंदर से है, लेकिन वही ज्ञान यदि इंद्रियों की संगत करके पर सन्मुख हो जाए तो हरिजन जैसा इंद्रिय ज्ञान कहलाता है। ज्ञान वास्तव में वो जो स्वरूप को विषय बनाए, बाकी ज्ञान नहीं, जड़ की क्रिया है, कोई ज्ञान नहीं। वो तो इंद्रिय ही है, माने जड़ है, पर द्रव्य है, ज्ञान ही उसको कहते हैं। पुत्र वही जो पिता का यश करे, पितृ पुत्र वही जो पिता को सम्मान दिलाए, पिता को सुखी करे, पुत्र वही, उसमें लिखा है अपनी वैराग्य शतक में, और अकेला जन्म देने मात्र से पुत्र कहलाता हो तो शरीर से भिष्टा भी जन्म लेती है, वो पुत्र मान लो उसको तुम, ऐसा लिखा है। अकेले देह में से निकलने मात्र से कोई संतान कहलाता हो तो शरीर से भिष्टा का भी जन्म होता है। ज्ञान वही जो जो मुझे जाने, मुझे जाने माने मैं और ज्ञान दोनों अलग चीज थोड़ी है, ये तो भाषा की मजबूरी है सच में पूछा जाए। इसीलिए लिखा छल ग्रहण मत करना, वहां लिखा ना अमृतचंद्राचार्य, मैं शुद्धात्मा को दर्शाता हूं और चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। वहां चूकने का अर्थ क्या है बताओ, चूकने का अर्थ क्या है कि भाई ये वचनों से बता रहे हैं, तुम कहीं उस वचन को ही ग्रहण कर लो, शब्दों को ही ग्रहण कर लो, छल ग्रहण मत करना वचनों का। जो लिखा ना ज्ञात वो तो वो ही है, छठी गाथा में, छह गाथा में तो समय सार पूरा हो जाता है, बारह में मध्यम और विस्तार से 415, विस्तार बुद्धि वालों के लिए 415। ऐसी गजब की बात है, कितनी बार केवल ज्ञान हो जाए इतनी देर में, तो ज्ञान वही है चारों बाजू समेटाई या निर्विकल अनुभव में केवल स्वरूप सन्मुख थयूं, ज्ञान वही है स्वरूप सन्मुख होता है। जैसे प्रकाश होता है, प्रकाश सूरज की किरण होती है आकाश से निकलती है, तो दो तरह के लेंस होते हैं, लेंस चश्मा भी होते ना, दो तरह के होते हैं, एक दूर वाला एक पास वाला। तो वो जो लेंस होते हैं वो इंग्लिश में मुझे नहीं पता भाई, नहीं तो संस्कृत मीडियम और उर्दू मीडियम वाला मामला है हमारे पास, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी जानते हैं पर बोल नहीं सकते, ऐसा है। वो लेंस फैले प्रकाश को संकीर्ण करता है, एक लेंस तो, और एक लेंस होता है कि संकीर्ण प्रकाश को फैलाता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? फैली चीज को समेटना और समटी चीज को फैलाना, ये दो तरह की चीज होती है। एक संकीर्ण को विकीर्ण करता है और एक विकीर्ण को संकीर्ण करता है। तो जिस समय ज्ञान स्वरूप में समाता है उस समय उस ज्ञान को ऐसा लेंस बनना पड़ेगा कि जहां विकीर्ण चीज संकीर्ण होती है। तो एक बचपन में बच्चे लोग छतों पर ऐसा करते थे, मैं भी करता था, लेंस लेकर और एक तीली जलाते थे, तीली, तो उस प्रकाश को उसका ऐसा वो बनाते थे कि वो लाल धारा निकल जाती थी, वो पूरा प्रकाश जो पीला पीला है वो लाल बन जाता था और देश तीली जल जाती थी। तो जिस प्रकार फैले प्रकाश में तीली जलना मुश्किल है, उसी तरह फैले ज्ञानोपयोग में स्वरूप का अनुभव होना मुश्किल है। वो संधि भेद तो पहले हो चुका, ज्ञानी का संधि भेद तो हो चुका, लेकिन जब पुनः पुनः स्वरूप में जाएगा तो जब जब स्वरूप में जाएगा उस समय उपयोग उसका संकीर्ण होएगा। हाँ, प्रश्न किया है इसी में ही रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कि साहिब आप ऐसा कहते हो कि उपयोग को समेट कर स्वरूप में लगाओगे तब प्रत्यक्ष दोबारा अनुभव होगा, तो केवली का तो उपयोग में लोका लोग झलकता है, उन्होंने तो संकीर्ण नहीं किया। कि सुनो, उनके क्षय ज्ञान है, क्षय उपशम ज्ञान में एक समय में एक ही वस्तु गेय बनती है। आगे आ रहा है विषय। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बोलो, नींद आ रही है क्या? अच्छी बात है, जिनवाणी माता लूरी सुनाएगी तो नींद तो आएगी आएगी, आना चाहिए, थोड़ा थकना चाहिए जगत से व्यक्ति, थकना चाहिए। हमारे बाबूजी कहते थे युगल जी, प्रभावना होती ना प्रभावना, तो प्रभावना में थोड़ा पेट्रोल बांट दिया करो। आपको कैसी बातें कर रहे हो कि हाँ, जिन संयोगों में व्यक्ति बार बार चेटता है, जा जाकर घरों में, उनमें एक बार देश लाई लग जाए, बार बार भागता है, बार बार भागता है, उसको चीज ही नहीं रहेगी तो बार बार विकल्प नहीं सताएगा उसका। अरे समझ में आ रहा है, क्या गजब है। वो उपयोग संकीर्ण होता है उस समय, उपयोग जो स्वरूप में समाने वाला उपयोग है वो इतना बेखबर हो जाता है कि उस उपयोग को ये पता नहीं रहता कि मैं उपयोग हूं। उपयोग को उस काल में यह भी नहीं ख्याल कि मैं अंदर समा रहा हूं। उपयोग में केवल एक ही बरसता है कि मैं चैतन्य चमत्कार मात्र हूं। भाषा कुछ भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ज्ञायक भाव कहो, चाहे चैतन्य चमत्कार कहो, चाहे चिदघन कहो, चाहे आत्मा कहो, चाहे पारिणामिक भाव कहो, चाहे शुद्धात्मा कहो, और कुछ भी नहीं आए, ज्ञात वो तो वो ही है, ज्ञात वो तो वही है। गांव के व्यक्ति ने पहली बार मिश्री खाई, दूसरे मिश्री बहुत अच्छी थी, मिश्री कैसी है, बहुत अच्छी है, अरे प्राण क्यों खा रहे हो, खा लो ना चख लो ना उसको, तो आत्मा कैसा, वो मैं ही तो हूं, उसका भोग कर लो ना, क्या आश्चर्य है, जो मैं स्वयं हूं, मुझे मेरा भोग नहीं, मुझे मेरा आनंद नहीं, ये कितना आश्चर्य है, ये कितना आश्चर्य है। सत्य तो यह है कि आवाल गोपाल सबको भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, पर यही मैं हूं ये नहीं पता। तेती एक काल मा एक गेन जाने छे। अभी तो इसमें बहुत प्रश्न उठे, मैं क्या करूं, अब वो विषय खुलता गया, आगे बढ़ा ही नहीं, तो बहुत अभी तो केवल 20% विषय हुआ है, लेकिन मूल विषय इसका करीब करीब हुआ है, जो इसका ये मुख्य पैरा है। एक प्रश्न उठाया धवला में, और बहुत साल पहले जब मैं कोटा गया था तो बाबूजी ने मेरे से प्रश्न पूछा था, श्रेणी चढ़ने के काल में जब मुनिराज छपक श्रेणी चढ़ते हैं या उपसम श्रेणी चढ़ते हैं, कोई दिगंबर मुनिराज उन पर उपसर्ग हो रहा है, तो उपसर्ग का ज्ञान मुनिराज को होता है या नहीं होता? जल्दी बोलो। हाँ जी, मुनिराज को उपसर्ग का ज्ञान होता है या नहीं होता? कोई कह रहा है होता है, कोई कह रहा है नहीं होता। यदि शुद्धोपयोग है तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब उपयोग स्वरूप में समा गया तो उपयोग तो तद्रूप होकर द्रव्य से अभेद हो गया है, तो उस उपसर्ग को जानेगा कौन? जानेगा कौन उस उपयोग को? और ये वाली बात का प्रमाण इसमें भी मिल गया, आ गया रहा है। आप तो कह रहे हो सच में पूछा जाए तो निर्विकल्प उपयोग और शुक्ल ध्यान में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। निर्विज्ञानी का निर्विकल्प उपयोग एक तरीके से शुक्ल ध्यान की जाति का है, वो उसी का अंश है। अंतर केवल समय का है। शुक्ल ध्यान में निर्विकल्पता ज्यादा काल है और चौथे गुण स्थान में निर्विकल्पता कम काल की है। केवल अंतर इतना है। वो ही निर्विकल्पता अंतर मुहूर्त रह जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। वही निर्विकल्पता अंतर मुहूर्त रह जाए तो आप कहोगे कोई सम्यक ज्ञानी, और मान लो वो अंतर मुहूर्त निर्विकल्पता कर ले कि कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि निर्विकल्पता और कषायों की शक्ति इसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो जब तक उसके साथ दोनों का अभाव होता जाता है, तो उसके अंतरंग और बहिरंग परिग्रह का अभाव हो और द्रव्य की इतनी ताकत हो तब उपयोग अंदर में जाता है, पूर्ण रूप से बैठता है। वो बहुत लंबी चर्चा है, एक लाइन नहीं हो पाए तीन तीन चार चार घंटे में, इतने प्रश्न उठते हैं इस विषय में, बहुत ही अद्भुत है। यही चर्चा करने का विषय है वास्तव में। एक काल में एक गेयत जाने छे इति ज्ञान स्वरूप जानवाने प्रवर्तु त्यारे अन्य ने जानवानु सहजज बंद थयू। ऐसा नहीं लिखा सहज जानू, सहज बंद थयू, सहज बंद हो गया। किसी को प्रश्न हो सकता है, गहरे स्वाध्यायी को, बहन को प्रश्न हो सकता है, निश्चयवासी के प्रकरण में आपके यहां चल रहा है, टोडरमल जी ने ये कहा, देखो शुक्ल ध्यान में भी श्रेणी चढ़ते समय अबुद्धि पूर्वक द्रव्य गुण पर्याय का जानना होता है, पर द्रव्य गुण पर्याय का, वहां ये लिखा है टोडरमल जी ने, पढ़ो आप। और यहां ये कह रहे हैं कि चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग में जाते समय, स्वरूप में जाते समय पर को जानना सहज बंद, अन्य का जानना सहज बंद हो गया। वहां जो लिखा वो अबुद्धि पूर्वक लिखा है। क्यों? फिर से सुनना। सातवें गुण स्थान से बारहवें गुण स्थान तक अंदर ही अंदर बुद्धि पूर्वक तो उपयोग स्वरूप में रहता है, लेकिन ज्ञान की कला में स्वयमेव स्वपर स्वपर दोनों, स्वपर दोनों का गुण से गुणांतर, पर्याय से पर्यायांतर ज्ञान होता रहता है ऐसा। लेकिन वहां भी बुद्धि पूर्वक ज्ञान तो स्वरूप में ही है, यह आगम शैली है, पर यहां जो बुद्धि पूर्वक की बात चल रही है कि बुद्धि पूर्वक तो स्वरूप में ही उपयोग चला गया, तब अन्य का जानना सहज बंद हो गया। आगे बहुत चमत्कृत बात आ रही है, आगे इसमें देखना। त्याई भी दशा थई कि बाह्य अनेक शब्दादिक विकार होवा छता पर स्वरूप ध्यानी ने तेने काई खबर न थी। जिस समय निर्विकल्प उपयोग होता है उस समय कोई 14 करोड़ बाजे बजाए और धरती फिर जाए और आकाश से बिजली गिरे और इतनी आवाज हो कि धरती पे भूकंप आ जाए तो भी स्वरूप ध्यानी ने कुछ खबर न थी। ऐसा गजब का काम, बिल्कुल एक तरीके से आंशिक श्रेणी समझ लो आप। मुनिराज संपूर्ण श्रेणी चढ़ते हैं बाहर। अरे जिस समय आप रात को सो रहे हैं और सोते समय चूहा खाकर भाग जाए, आपका उपयोग नहीं है, तो उस समय आपको कष्ट नहीं होता, मालूम भी नहीं पड़ता। सुबह जागे तब मालूम पड़ता है कि चूहे ने खाया है ऐसा। यहां तो स्वरूप में उपयोग इतना तद्रूप हो गया, इतना तद्रूप। अकेला शुक्ल ध्यान, अकेला शुद्धोपयोग के काल में ज्ञान आत्मा को गेय बना रहा है अकेला, ऐसा नहीं, साथ में आनंद भी चल रहा है। आनंद उसमें एक उपयोग और स्वरूप की जुदाई का बहन नहीं है। ख्याल आ रहा नहीं आ रहा? एक बालक मां से बिछड़ा और 5 साल बाद मिला, तो मां से मिलन में अपनी और मां की जुदाई का विचार भूल गया। मां ही मैं हूं और मैं ही मां हूं, ऐसा हो जाता है। इसलिए जो उपयोग बाहर था वो उपयोग अंदर स्वरूप में ऐसा समा गया, ऐसा समा गया कि बस मैं ही आत्मा हूं। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञाना अन्यत करोत। ऐसे समय में बाहर शब्द का विकार हो रहा हो, आदि शब्द लिखा, आदि का अर्थ क्या है? समा गया। कोई चींटी भी भर दे शरीर में, कोई उपसर्ग भी कर दे, नगाड़े बज रहे हो अल्लाह मच रहा हो, स्वरूप ध्यानी को कुछ खबर नहीं, कुछ खबर न थी। आप कहोगे वो शुद्ध उपयोग का काल तो बहुत कम है। क्या? हां, कम है, उतने ही काल की बात है। और कदाचित ज्ञान भी हो तो कब हो? कि जब वो स्वरूप ध्यान नहीं था तब ज्ञान होता है। स्वरूप ध्यान के काल में बाह्य स्थूल परद्रव्यादि का ज्ञान कैसे संभव है? संभव ही नहीं है, होगा ही नहीं। यहां टोडरमल जी कह रहे हैं, गज कुमार मुनिराज पर जलती सिगड़ी जला दी। किसने? ससुर ने। हद हो गई, ससुर तो तिलक चलाते हैं और ये सिगड़ी रख रहे हैं, क्योंकि कन्या, उनकी कन्या से विवाह तय हो गया, बाद में राग टूट गया। पहले जमाने में तो ऐसा होता था, एक बार किसी से विवाह निश्चित हो जाए और उसके बाद टूट जाए तो कन्या दूसरा विवाह नहीं करती थी। आजकल तो सगाई के बाद ये कह दे जाओ जाओ, क्या लेना देना, हम तो दूसरी कर लेंगे। अरे ये बड़ा मुश्किल काम है, ऐसा जैन धर्म है। अब तो बाहर में नीति अनीति का भी विचार नहीं रहा, बहुत मुश्किल काम है। इसके सिवा क्या? राजुल को बहुत समझाया पिता ने, उनकी सहेलियों ने, कि तुम्हारी तो सगाई हुई थी, शादी थोड़ी हुई थी, तुम दूसरा विवाह कर लो। अब तो कहती है, मां पिता सच में दूसरा मैंने अनंत विवाह रचाई जीवन में, पर आज तक सुख पाया क्या? सुख पाया क्या मैंने? मान लो दूसरा भी ऐसा निकला तो क्या होगा, तीसरा भी ऐसा निकला तो क्या होगा? अब तो मैं ऐसे पति का वरण करूंगी कि जो मुझे कभी छोड़कर ना जाए, स्वरूप का वर्णन करूंगी मैं। ये तो अच्छा हुआ, ये मंगल घटना हुई है, दुर्घटना नहीं, मंगल घटना हुई, सच्चा विवाह हो गया। गज कुमार ने जलती सिगड़ी रखी गज कुमार के ऊपर, तो उस समय उपयोग स्वरूप में नहीं गया था, थोड़ा कच्चा था, छठे गुण स्थान में थे। लेकिन छठे गुण स्थान में भी तीन कषाय का अभाव है और संजुलन कषाय का भी मंदोदय चल रहा है, ध्यान शुद्ध उपयोग में जाने वाले हैं। तो उस समय गज कुमार ये विचार करते हैं, अहो जंगल में कौन उपकारी आया है? लोग तो शादी के समय सहरा पहनाते हैं, ये जंगल में मुझे मुक्ति का सहरा पहना रहा है। विचार देखो आप, सविकल्प का विचार भी देखो, सविकल्प का विचार। और इधर उपसर्ग से तो दृष्टि बहुत दूर, उस अस्थिरता का जो विकल्प है वो भी विकार है ना, उससे भी विकल्प से बहुत दूर, उसके चिंतन विकल्प के विकल्प से भी बहुत दूर, बस स्वरूप में समा गए। सच पूछा जाए तो चौथे गुण स्थान का निर्विकल्प उपयोग और सातवें गुण स्थान की छपक श्रेणी में की क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है। शुद्धोपयोग तो एक जैसा ही है, चौथे गुण स्थान वर्ती का शुद्धोपयोग और सप्तम गुण स्थान वर्ती के शुद्धोपयोग में सघनता का अंतर है। वहां भी ज्ञान स्वरूप में रमण करता है और यहां भी ज्ञान स्वरूप में रमण करता है। और इधर स्वरूप में गए, इधर सर धधक रहा था और कर्म नाश हुए, केवल ज्ञान ले लिया। उपसर्ग केवल ज्ञान का निमंत्रण लेकर आया, केवल ज्ञान का निमंत्रण उपसर्ग। इस स्वरूप ध्यानी ने तेनी काई खबर न थी, गजवे करो आज चतुर्दशी के दिन प्रयोग करो घर जाकर आनंद आएगा, तो अष्टानी का मनाना सार्थक रहे। अने देवों को भी ऐसा लगे स्वर्ग से, ऐसा यदि गुरुदेव श्री स्वर्ग से देख रहे हो और उनको ऐसा लगे कि देखो वास्तव में साधना करने वाले समूह इकट्ठा हो गया है इधर, साधारण बात है, साधना की कीमत है। आज बाहर में तो ऐसा अनंत बार सुना है, बाकी तो सब काल ले, ये महोत्सव भी अनंत बार किया है, महोत्सव भी पूजन विधान भी अनंत बार किया है, क्या है कोई दम नहीं है, बहुत कर लेते अनंत बार, भवनवासी देव जाके बहुत पूजन कर लेते भगवान की, स्वरूप की दृष्टि नहीं हुई तो पूजन करते ही करते बस जिंदगी इसी में निकल जाती है। मंदिर के भगवान, मंदिर के बर्तन, मंदिर के धोती दुपट्टा, मंदिर की सामग्री, तुम्हारा क्या है पूजन में तुम्हारा क्या है एक भाव है अपने, और भाव भी निर्मल ना हो, वो असली निर्मल भाव वही है कि जहां पूज्य जैसा स्वयं हो जाए, वो निर्मल भाव है। ए प्रमाणी मति ज्ञान पर स्वरूप सन्मुख थयू, बड़ी नया दिखना विचारो मटवा थी, श्रुत ज्ञान पर स्वरूप सन्मुख थयू। सुनो सुनो सुनो, दोनों मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, दोनों स्वरूप सन्मुख है। श्रुत ज्ञान में नए होते हैं, पांच ज्ञान में अकेला, श्रुत ज्ञान में नए होते हैं, बाकी चार ज्ञान प्रमाण होते हैं, मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये चारों ज्ञान प्रमाण ज्ञान है, पर श्रुत ज्ञान में नए भी है और प्रमाण भी है, दोनों है। इसका विश्लेषण करो, मति श्रुति ज्ञान कैसे, हमने तो यही सुना कि मति ज्ञान पर को ग्रहण करता है, अरे जो पर को ग्रहण करे खरेखर मति ज्ञान नहीं, वो तो कुमति ज्ञान है। सच पूछा जाए तो मति माने एक बार होने वाला ज्ञान, फिर से सुनना, जैसे ये रूमाल है तो पहले मति ज्ञान होता है, और मति ज्ञान ने जिस पदार्थ को ग्रहण किया उसके विशेष ज्ञान श्रुत ज्ञान कहलाता है। तो जो प्रथम पहले मति ज्ञान इंद्रिय और मन के माध्यम से बाहर चला जाता था, अब वही मति ज्ञान ने प्रथम स्वरूप का ग्रहण किया और फिर दोबारा श्रुत ज्ञान ने उसमें रमण किया, और वो भी किसके विचार को मिटाकर, के नए प्रमाण आदि का विचार मिटकर। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, चक्की से कोई चीज पीसे, अब पीस के खाने का समय आए या चक्की के गीत गाए, जो जो चीज पूर्व में साधक है वही वही चीज बाद में बाधक है। ये चीज किसने कही है, समय सार नाटक में पंडित बनारसी दास जी ने, बताओ नए प्रमाण स्वरूप में जाने के लिए साधक है या बाधक। अरे बोलो बड़ा मुश्किल है, नहीं बोलो तो ही अच्छा है समझ लो बात को, समझ लो बात को तो समझ में आएगा। टिकट होती है और ट्रेन में बैठे, बाद में मान लीजिए गंतव्य स्थान आ गया, तो टिकट ट्रेन में जाने के लिए साधक है या बाधक, और जब गंतव्य स्थान आ जाए उसके बाद वो टिकट, अरे ट्रेन स्वयं बाधक है उसमें। बाद में आप जानते हैं दुनिया कितनी होशियार है, सरकार भी कितनी होशियार है, जब गंतव्य स्थान आ जाता है तो कोई कहता है क्या उतरो, सब अपने आप उतर जाते हैं, कोई नहीं कहता, क्योंकि अब वो सीट स्वयं बाधक है। सप्त तत्व का चिंतन स्वरूप में जाने में साधक है या बाधक। अरे बोलो, पूर्व दशा में जिसे कुछ खता पता नहीं मैं कौन तत्व हूं, उसके लिए तो वो समझना भूत पूर्व नेगम ने से साधक कहा जाता है। वास्तव में वो खरेखर व्यवहार भी कब कहलाएगा कि जब उसे आत्मा का ज्ञान हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, तो पूर्व में जो उसका चिंतन चला था वो साधक कहा गया। अज्ञानी को अभी स्वरूप का अनुभव ही नहीं हुआ तो साधक भी कैसे कहें। अरे नहीं आया समझ में, एक किसी कन्या का विवाह की बात होनी थी और आपस में बड़े लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन 5 साल से शादी नहीं हुई, चर्चा ही चल रही थी, शादी नहीं हुई। तो वो जो दो लोगों की जो चर्चा चल रही थी कि इस कन्या का इससे करा दें इससे करा दें, और जो बड़े लोग प्रयत्न कर रहे थे, वो वास्तव में साधक तो तब कहलाते कि जब शादी हो जाती, हुई नहीं तो अकेली चर्चा ने माथा ही तो खराब किया, उसमें लाभ क्या हुआ। ये तो उपचार का भी उपचार करके ऐसा कह दिया जाता है कि सप्त तत्व का चिंतन स्वरूप में जाने के लिए साधक है। साधक उसके लिए है कि जिसका चिंतन चिंतन के वाय पूर्वक अब आत्मा का दर्शन होने वाला है, तो उसे पूर्व अभाव रूप साधन कहा जाएगा, और उसको न्याय की भाषा में पूर्व चर निमित्त कहा है। क्या कहा है उसे? पूर्व चर निमित्त। और इस समय होने वाला है, एक दो बात और ले लेते फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट और। एक कन्या का विवाह हुआ, पहले जमाने में फ्लाइट नहीं थी, कुछ नहीं थी, और उसका पति परदेश चला गया पैसा कमाने, 7 साल तक नहीं आया। तो ग्रंथों में ऐसा लिखा है 5 साल तक यदि पति वापस ना आए तो कन्या परेशान होने लगती है, तो वो खोजने जाती है, और 7 साल में नहीं आए तो फिर तो खोजने जाए, उस ना मिले 7 साल बाद भी या तो फिर ब्रह्मचर्य ले ले, दीक्षा ले ले, ऐसा कब तक इंतजार करेगी। 7 साल हो गए पति नहीं आए, इसने तो निश्चित कर लिया, सास ससुर से बोला कि अब आप हमारी परीक्षा ना ले जाता, गए कहां ये तो बताओ, पता भी तो नहीं कि मैं विधवा हूं या सदवा हूं, क्योंकि मालूम ही नहीं है, पहले कोई फोन तो थे नहीं या पत्र तो थे नहीं कि जो बता दे कि वो सही सलामत है या नहीं है, तो मैं ये माथे पर बिंदिया कब तक लटकाती रहूंगी। आप बाद में हुआ ये कि एक व्यक्ति परदेश से आया और उसने कहा मैंने तुम्हारे पति को देखा है, मैंने तुम्हारे पति को देखा है, अब ये तो बहुत खुश हो गई, इतनी प्रसन्न, तुमने हमारे पति को देखा है तो चलो हमें ले चलो। तो वो पुरुष उस स्त्री को उसके पति से मिलाने ले जाता है गाड़ी में बैठ के, तो बताओ वो स्त्री उस पुरुष के साथ कैसा व्यवहार करेगी, बोलो। मतलब ऊपर आए लोक में ऐसा लगेगा जगत वालों को कि जैसे यही पति हो, यदि वो उससे खराब व्यवहार करे कि तुम तो पराए पुरुष हो और पीठ फेर के ऐसा बैठे, तो वो कहेगी जब हम इतने बड़े रावण है तो हमारे साथ जाई क्यों रही हो तुम। लोगों को ऐसा लगे कि यही पति है, लोगों को ऐसा लगे अब इसके बाद उनके पति मिल गए, पति मिल जाने के बाद वो पुरुष जिसने उसके पति से मिलाया है वो बाधक है या साधक है, वो पुरुष बाधक है या साधक है, बताओ आप। जिसकी कृपा से, अरे ऐसा लिखा प्रवचन सार में, हे पंचाचार तुम्हारी कृपा से मुझे शुद्धात्मा का वेदन हुआ, लेकिन अब मुझे शुद्धात्मा प्राप्त हो गई, अब तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। अब वो पुरुष बाधक है, बाधक, बाधक कमाल है, बाधक। हाँ हाँ, अब कोई ये कहे कि नहीं तुम्हारी कृपा से प्राप्त हुए हैं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए कि मुझे सारी जिंदगी तुम्हारे घर रहना है, भैया तुम नहीं मिलाते तो ही अच्छा था, फिर तो नहीं मिलाते तो ही अच्छा था। इसलिए ये सब पूर्व के चिंतन, पूर्व के 7 तत्व की चर्चा, नए प्रमाण की चर्चा, स्वरूप स्वरूप भोग के काल में सबके सब बाधक हैं। इसलिए नए प्रमाण ज नहीं, नए प्रमाण ही नहीं, ऐसा है। बस बात पूरी करते तेनी कई खबर नती, ए प्रमाणे मति ज्ञान पर स्वरूप सन्मुख थयु, बड़ी नया दिक ने विचारो मटवा थी, लिखा ना नए नए प्रमाण के विचार मटवाती, श्रुत ज्ञान पर स्वरूप सन्मुख थयु। श्रुत ज्ञान माने क्या, नए लोग भी काफी हैं, माने भाव मन को श्रुत ज्ञान कहते हैं और कुछ नहीं है, आगे आएगा। और कौन सा भाव मन, जो पर का चिंतन करता हो वो नहीं, वो भाव मन जो स्वरूप का चिंतन कर रहा है। और यहां तो समकिति की बात छे, पूर्व में आत्मा का अनुभव हो चुका है, दोबारा वो स्वविकल्प से निर्विकल्प हो रहा है, तो उसको तो भावश्रुत ज्ञान है ही, लेकिन अनादि मिथ्या दृष्टि को भी यदि स्वरूप का अनुभव होगा तो इसी विधि के द्वारा होगा, और कोई दूसरी विधि नहीं है। अब इसमें ये वाला जो पहरा आ रहा है आगे वाला, इसमें आत्मख्याति की टीका का एग्जाम्पल के द्वारा सिद्ध किया है कि अनुभूति के काल में नए प्रमाण भी विलय को प्राप्त हो जाते हैं। फिर इसके बाद वो जो अनुभव हुआ वो मन जन्य है या अतीन्द्रिय? क्या कहा? अरे बोलो, वो आत्मा का जो अनुभव हुआ वो मन जन्य है या अतीन्द्रिय? ये बड़ा भारी प्रश्न टोडरमल जी के आगे रखा गया, इसकी चर्चा कल करेंगे। और बाकी जितने और दो पेज के में जो किस किस पहरा में क्या क्या आया है वो मैं आपको एक एक लाइन में बता दूंगा, ऐसा। बाकी आप स्वाध्याय करना फिर।